शांति। गुड मॉर्निंग, सभी फ्रेश है ना? आज हम सबके बीच में ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी आदरणीय डॉक्टर सविता बहन जी उपस्थित हैं। हम उनका एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। ये अमृतसर और अंबाला के भाई बहनों की भट्टी है। आज का जो विषय है वो है साइलेंस और सॉल्यूशंस। साइलेंस एक बहुत प्रकार बहुत बड़ी शक्ति है और एक बहुत बड़ी साइंस है अपने आप में। तो कैसे बाबा ने जो हमें तपस्या और साइलेंस की विधियां बताई हैं, उनसे कैसे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनका हम समाधान कर सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, और वो एवरलास्टिंग सॉल्यूशंस। आज उस विषय पर आप प्रकाश डालेंगे। आपका मैं शॉर्ट में परिचय देती हूँ। आप MBBS हैं, आपने कोटा राजस्थान से एजुकेशन किया और 1989 में आपने MBBS कंप्लीट किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर, इंदौर और माउंट अबू में ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में आपने काफी समय तक आपने प्रैक्टिस की, मेडिसिन प्रैक्टिस किया आपने, और 1991 में आपने ग्लोबल हॉस्पिटल ज्वाइन किया। 2000 तक आपने वहां अपनी ऑनररी सर्विसेज दी और 2001 से आपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को ज्वाइन कर लिया, डेडिकेट हो गए समर्पित रूप में, और तब से लेकर के आज तक आप अपनी रेगुलर सेवाएं दे रहे हैं। आप प्रेजेंटली शांतिवन में बेस्ड हैं, लेकिन जैसे मैंने कल परसों भी सुनाया था, अपनी 3-4 मुख्य बहनें हैं जो यहाँ पर रेगुलर सेवाएं हमारी तीनों ही कैंपसेस में सीनियर फैकल्टी मेंबर के रूप में दे रही हैं। तो आप भी सीनियर फैकल्टी मेंबर के रूप में, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन की भट्टियां हो, चाहे विंग्स के कार्यक्रम हो, चाहे योग शिविर हो, चाहे अन्य कोई कार्यक्रम हो, बाप दादा मिलन के कार्यक्रमों के समय क्लासेस हो, तो आप अपनी सेवाएं रेगुलर देते रहते हैं और देश के, भारत के अनेक हिस्सों में जाकर के आपने अनेक प्रकार के प्रोग्राम्स किए हैं, और नॉन बीकेस के लिए भी बीकेस के क्लासेस, भतियां आदि भी आप कराते रहते हैं। आप सरल स्वभावी हैं और नम्रचित हैं। ये आप इस स्वभाव के धनी हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं स्वभाव, व्यवहार में स्वभाव बहुत काम में आता है। और 2001 में इंडियन गवर्नमेंट ने 2001 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन डिक्लेयर किया था। उस समय पूरे भारतवर्ष में विमेन विंग ने बहुत सारे कैंपेन्स निकाले थे, तो आपने उनमें पार्टिसिपेट किया था। तब से लेकर के आप यहाँ मधुबन में हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में विमेन विंग में भी आप कार्यरत हैं, और अभी तो कई अभियानों में से आप जुड़े हुए हैं और आप उसमें कार्य करते रहते हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ आपसे कि आप अपने विचार, अपने अनुभव युक्त विचार इस विषय पर रखेंगे और हम सबको लाभान्वित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर सविता बहन जी।
ओम शांति, ओम शांति। जब हम ओम शांति बोलते हैं तो इसमें ही शांति का अनुभव होने लगता है। हमको पता है कि ओम शांति के तीन अर्थ हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ और मैं शांति के सागर की संतान हूँ। इसलिए दादी जान के हमेशा तीन बार ओम शांति बोलते हैं ताकि मुझे तीनों स्मृति आ जाए। और यदि हम ये स्मृति स्वरूप हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ और शांति धाम की रहने वाली हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी समस्याएं और परिस्थितियां जो अशांति पैदा करने वाली हैं, वो हमें अशांत नहीं कर पाएंगे। वैसे तो आत्मा स्वभाव से शांत है ना? हम 24 घंटे शांत रह सकते हैं, लेकिन अशांत थोड़ा समय कभी कभी होते हैं, ऐसे ही कहेंगे। 24 घंटे अशांत रहते हैं या शांत रहते हैं? क्योंकि शांति नेचुरल है तो शांति में तो हम सहज रहते हैं, लेकिन जब हम अशांत हो जाते हैं तो शांति का प्रयास शुरू कर देते हैं कि अब अशांत से शांत कैसे हो जाए, ऐसे ही होता है। तो जो भी जीवन की उतार चढ़ाव हैं, जो परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, वो मन में अशांति पैदा करती हैं, तो पहले आपसे सुनेंगे हम कौन कौन सी बातें हम बाबा के बच्चों को भी अशांत करती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने समझा है, जाना है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो हमारा मन पूरी तरह से अब शांत ही रहता है चाहे जो भी हो जाए, ऐसा है कोई? कोई ऐसे समझते हैं कि इतनी शांति हो गई हमारे मन में? शिव बाबा तो कहते हैं जब तक शरीर कर्मेंद्रियां हैं, शांति इस दुनिया में मिल ही नहीं सकती। कलियुगी दुनिया में पूरी शांति कहाँ मिलने वाली है? परम धाम में ही मिलने वाली है। और फिर उसके बाद जब सतयुग में आएंगे तब वो सुख शांति की दुनिया है। तो इस दुनिया में तो जो भी है पूरी शांति तो नहीं हो सकती। तो मैं नहीं समझती कोई हाथ उठाएगा कि मैं पूरी तरह से शांत रहता हूं, लेकिन फिर भी जो बातें आती हैं हमारे जीवन में, वो कौन सी ऐसी बातें आती हैं जो हमें अशांत करती हैं? फिर उसका समाधान कैसे होगा ताकि शांति हो जाए? बोलिए। सब ज्ञानी तो आत्मा बैठे हैं। अच्छा, हम सोचते हैं किसी की बात का बुरा ना लगे ना, फिर भी बुरा लग जाता है, यानी फीलिंग आ जाती है, जिसको बाबा कहता है हम दुख ले लेते हैं। बाबा हमें कहता है कि दुख नहीं दो और दुख नहीं लो, ना दुख दो ना दुख लो, लेकिन हम ले लेते हैं तो फिर मन अशांत हो जाता है। ठीक है, एक कारण। और बच्चे ना कहना, माने माताओं की सबसे बड़ी समस्या कि बच्चे कहना ना माने, ठीक है। और भाइयों को धन कमाने में ऊपर नीचे हो जाए, फील्ड ही है धन कमाने का, फिर उसमें बिजनेस ऊपर नीचे हो गया या जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें कोई समस्या आती है, जो नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाह और जो बिजनेस करते हैं उनकी प्रॉफिट लॉस वाली बात, ऐसे ही कहेंगे? उसमें मन अशांत होता है या ठीक है जो भी है उसमें हम साक्षी हैं? होता है, होता है ना? बिल्कुल होता है। और सुनाओ बहने। बाबा के कार्य में कोई विघ्न बनता है, विघ्न स्वरूप यज्ञ में कोई विघ्न पड़ता है समझो, तो भी मन अशांत होता है। हाँ बोलो। ये भी सभी का, मैं समझती हूँ सभी की प्रॉब्लम होगी, सुन लिया सबने क्या सुनाया? बहन जी ने नहीं सुना, पीछे वालों ने। उन्होंने कहा योग में बैठे हैं, लक्ष्य लेकर बैठते हैं, पूरा समय याद में बाबा की ही याद में रहना है, लेकिन पता नहीं कहाँ से कोई पुराना थॉट आ जाता है हाँ, और फिर उसमें बुद्धि चली जाती है। तो मन हाँ, कोई ऐसी बात याद आ गई जो उस समय जिसने मुझे अशांत किया हो, तो अब याद में भी क्या होगा, अशांति आ जाएगी नहीं आ जाएगी हाँ। तो ये तो हम सभी योग में थोड़ा बहुत फील करते ही हैं कि अचानक मन कहाँ चला जाता है, फिर बड़ी मुश्किल से उसको खींच के वापस लाना पड़ता है कि अरे भाई अभी तो बाबा को याद करना है हाँ, ये सब बातें बाद में सोचेंगे, या बाबा को दे देते हैं फिर कि बाबा ये बात है हाँ, बाबा को सौंप दिया तो फिर मन शांत होता है। ठीक है, और कोई हाँ बोलो। आजकल जो साइंस के साधन हैं हाँ, अब नेचुरल अगर हम बहुत ज्यादा टू मच, क्योंकि हर चीज का अगर बेनिफिट है तो उसका लॉस भी है ना। अगर हम उसे अपने उन्नति के लिए यूज करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद भी है। आज ज्ञान के लिए हमें सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पर हाँ, या जो भी सोशल मीडिया है उसका हम बहुत फायदा भी ले सकते हैं, और चाहें तो नुकसान भी उठा सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। तो अगर हम नुकसान वाले पार्ट में चले गए तो फिर क्या होने वाला है, मन अशांत होने वाला है या शांत होने वाला है? अशांत होने वाला है। तो हमने उसको कैसे यूज किया, ये हमारी कंट्रोलिंग पावर है एक्चुअली ना। होगा तो उसमें सब कुछ, लेकिन हमने उसको कितना कंट्रोल से यूज किया है वो उस पर डिपेंड करता है। और किसी को कुछ कहना है? हाँ, हमारी अपनी कमजोरियां हाँ, जिसको हम कहेंगे कि जो हमारे विकारों के संस्कार हैं, विकारों के अंश वंश। अब हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम जो पुराने हमारे थे ज्ञान के पहले वाले, वैसे संस्कार तो नहीं रह जाते, मोटे रूप में सब खत्म हो जाता है। हम दुनिया वालों जैसे गुस्सा नहीं करते, या दुनिया वालों जैसे लोभ नहीं होता हमारे अंदर, या वैसा अहंकार भी नहीं, हमारा देह अभिमान खत्म होता है, लोभ खत्म होता है और मोह भी। लेकिन इन सबके जो अंश वंश वाले संस्कार हैं, उसके कारण बाबा की श्रीमत का अगर उल्लंघन होता है तो भी मन अशांत होता है, क्योंकि हमें श्रीमत तो मालूम है ना। तो अगर बाबा की अवज्ञा की तो मन खाएगा, जिसको हम कहते हैं मेरी कॉन्शियंस जानती है कि मैंने क्या गलत किया। क्योंकि जो सूक्ष्म विकार हैं वो दूसरों को नहीं दिखाई देते, दूसरों को लगता है हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं ज्ञान में, लेकिन वो हमें पता चलता है कि हाँ मेरी वो जो कमियां हैं वो मुझे अशांत करती हैं। तो बिल्कुल सही हाँ? तो ये कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं जो हमारे मन को अशांत करती हैं। और एक चीज और किसी ने नहीं कही, वो है हमारे फिजिकल हेल्थ। बीमारी आ जाती है हाँ, और अगर साधारण सी बीमारी है तो शायद हम इतनी परवाह नहीं करते, पर अगर कोई ऐसी बीमारी जिसे हम असाध्य बीमारी कहते हैं हाँ, जिसमें जीवन मरण का प्रश्न होता है, कोई ऐसी बीमारी किसी को हो जाए तो भले हमें पता है हम भी मर्जीवा बन चुके हैं मर्जीवा। आज भी मुरली में बाबा ने कहा, वरदान था ना आज, कि जो जीते जी मर गए उनको मरने से क्या डरना है हाँ, जीते जी मरे हुए हैं या नहीं है, लेकिन वो तो हम भूले हुए होते हैं, इतना हमें याद नहीं रहता है। जैसे ही पता चलता है ऐसी कोई बीमारी सामने आई है तो वो जो मन की अशांति होती है वो शायद सबसे अधिक भय वाली अशांति जिसे हम कहें हाँ, वो तो है, लेकिन वो उतनी पावरफुल स्टेज हमारी चाहिए। तो वही हम आज हम समझेंगे कि जो ये परिस्थितियां पैदा होती हैं इसमें भी मन शांत कैसे रहे। अशांति में शांत रहना ही ज्ञान है। शांति में तो सभी शांत रह सकते हैं ना, क्योंकि स्वभाव ही हमारा शांति है, तो हम वही पसंद करते हैं तो हम सहज उसमें रह पाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं रह सकते, लेकिन परिस्थितियां आ गई। अब मानो जैसे आपने बात कही कि किसी ने मुझे दुख दिया और वो दुख की फीलिंग हमने सहन तो कर ली, किसी ने मेरे ऊपर गुस्सा किया, किसी ने मेरा अपमान किया, हो जाता है, हम व्यवहार में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो ऐसे तो कोई नहीं होगा कि हमें ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार न करें, हमेशा ही सब हमसे अच्छा व्यवहार करें संभव ही नहीं है, और आज की दुनिया में तो बिल्कुल ही हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात की ना। तो हर दिन कोई ना कोई ऐसा हमसे जरूर टकराएगा जो हमें कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाएगा या ऐसा कुछ हमारे लिए कर जाएगा जिसका हमें दुख पहुंचेगा। अब हमें बाबा ने ज्ञान दिया है, शांति किससे मिलती है? ज्ञान ही मुक्ति जीवन मुक्ति देता है, ज्ञान से ही मुक्ति जीवन मुक्ति है, ज्ञान में वो शक्ति है। तो ज्ञान अगर हमने यूज कर लिया तो ऐसी परिस्थितियों में भी मन शांत रहेगा, ये नहीं कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन अब मुझे क्या यूज करना है, इसमें कौन सा ज्ञान यूज करना है कि ऐसी स्थिति में भी मेरा मन शांत रहे, नहीं तो मुझे रोज ही अशांति होने वाली है क्योंकि रोज कोई ना कोई आकर के मेरे लिए ऐसा करने ही वाला है, वो फिक्स प्रोग्राम है। तो क्या सोचना है, क्या सोचना है? अगर कोई मुझे दुख दे रहा है इसका मतलब मैंने भी उसे पहले कभी दुख दिया है। हम कहते हैं इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। कहते हैं ना, अगर इस जन्म में नहीं किया तो हो सकता है पूर्व जन्म में किया होगा, इस जन्म में भी कर लेते हैं हम, जाने अनजाने भी हमसे भी भूलें हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन मुझे ये समझना है कि मेरा कोई हिसाब किताब था और वो पूरा हुआ। अगर मेरा कर्ज उतरता है तो हमें अच्छा लगता है ना, तो जो मेरा कर्ज था वो पूरा हो गया। पर कई लोग कहते हैं बहन जी एक दिन की बात नहीं है, ये तो रोज इसके साथ रहना है, ये तो रोज ही होता है, अब रोज कब तक, आखिर कोई लिमिट तो होगी कि नहीं होगी, हाँ तो उस लिमिट का क्या करें बताओ, क्योंकि ऐसे हर एक के जीवन में कोई ना कोई लोग होंगे, परिवार में या जो काम करते हैं जहां काम के साथी भी कोई ना कोई ऐसे जरूर होंगे कि हर रोज ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा दे देते हैं जो। तो यहां पर अब ज्ञान हमें क्या कहता है कि जो भी हम अन्य आत्माओं के संपर्क में आ रहे हैं उनके पार्ट को समझें, साक्षी होकर के देखें, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, जो वो पार्ट बजा रही है वो उसका पार्ट है ना। किसी का ड्रामा में रावण का पार्ट है तो वो राम का पार्ट तो नहीं बजा सकता, अगर रावण राम का पार्ट बजाने लगेगा तो क्या होगा, ड्रामा ड्रामा ही नहीं रहेगा, और जिसको राम का पार्ट बजाना है वो राम का ही बजाएगा। तो अगर हमने इस सृष्टि को खेल समझा और उस खेल में हम सभी पार्टधारी हैं और हम किसी का दोष नहीं है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसका भी दोष नहीं है ना, वो भी इस ड्रामा का एक हिस्सा है, तो उसके पार्ट को समझ के मुझे स्वीकार करना है। देखो दुनिया में भी लोग नाटक देखते हैं तो नाटक को साक्षी होके ही देखते हैं ना, पता है, और एंजॉय करते हैं उस ड्रामा में, विलन के पार्ट को भी कई लोग बहुत एंजॉय करते हैं कि देखो विलन कितना अच्छा पार्ट प्ले कर रहा है, करते नहीं करते है ना। तो अगर मैंने उसको उस स्तर से देखा जिसको हम कहते हैं सांसारिक स्तर से थोड़ा ऊंचा उठ के, अपनी मन बुद्धि को थोड़ा ऊंचा उठाया और जो ज्ञान की दृष्टि बाबा ने दी है हमको, उस ज्ञान की दृष्टि से उस आत्मा के पार्ट को समझा, तो अब वो कुछ भी करती रहेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने समझ लिया कि ये ऐसा क्यों कर रही है। कोई भी बात का अगर मुझे राज समझ में आ जाएगा तो वो बात, वो व्यक्ति मुझे परेशान नहीं करेगा। ऐसे ही होता है ना, जब हम अज्ञान में होते हैं तो भय होता है। डॉक्टर भी बैठे हैं सामने, देख रही हूं मैं सभा में, तो मरीज को बीमारी का ज्ञान नहीं होता है तो उसको जरा भी सीने में दर्द होगा या सिर में दर्द होगा तो बड़ी बड़ी बातें सोच लेंगे, कहीं मेरे को हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, सिर में दर्द हुआ माना कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया। सीधा कहाँ पहुंच रहे हैं, अति में जाते हैं, क्योंकि कल्पना की कोई लिमिट नहीं है, आप कहां तक भी अपने मन को उड़ा सकते हो। अब वो चीज कितना भय पैदा करेगी, लेकिन जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को तो ज्ञान है, उसको पता है ये सिम्टम केवल हार्ट अटैक के नहीं है, ये इस बीमारी में भी ये सिम्टम हो सकते हैं, तो वो पूरा चेक करेंगे, फिर कहेंगे नहीं डरने की कोई बात नहीं है, तो सिंपल ऐसी मस्कुलर पेन है, ये सिर दर्द तो जस्ट हो सकता है आप बहुत धूप में गए या आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, कुछ भी ऐसा कारण बना इसकी वजह से, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत हो गए क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया वो बात है ना। तो ज्ञान जो है वो हमारे भय को समाप्त करता है, किसी भी बात का राज मुझे पता है तो अपने आप मन शांत हो जाता है। तो हर एक पार्टधारी के पार्ट को वो बदल नहीं जाएंगे, ये अपेक्षा नहीं कर सकते आप, भले मैं शांति का दान दूं, कोई मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, मानो मेरी इंसल्ट कर रहा है, चार लोगों के सामने मुझे गाली दे रहा है, तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है, वो मुझे जरूर करना है। बाबा कहता है गुस्सा करने वाले को भी आप दुआएं दो, उनके प्रति शुभ भावना रखो, क्योंकि वो आत्मा अभी माया के वश है, अगर वो माया के वश है तो मुझे रहम दिल बनना है उसके ऊपर। हम रहम दिल बने और हम शांति का दान दे, क्योंकि हम शांति देवा हैं, यानी वो आत्मा मुझे याद दिला रही है मेरे कर्तव्य का कि अब मुझे क्या करना है। आप समझो आग जल रही है तभी तो फायर ब्रिगेड की जरूरत है, आग नहीं लगेगी तो फायर ब्रिगेड चाहिए? अब क्रोध भी क्या है, एक अग्नि है ना, मतलब किसी के अंदर अगर वो आग पैदा हो गई तो मुझे क्या काम करना है, उस अग्नि को भड़काना नहीं है, उस अग्नि को मुझे शांत करना है। तो अगर मैंने वो बोल रहा है और मैंने भी चार बोल दिया, दुनिया में लोग क्या करते हैं, दो का चार और चार का आठ, सहन करने की ताकत तो आज किसी में है नहीं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे हम क्या करेंगे, बाबा कहते हैं मुख में मुलहरा डाल दो, कई बार मुरलियों में आता है ना, मुख में मुलहरा डालने का मतलब क्या है, मुख में कुछ पड़ा होगा तो आप बोल ही नहीं पाओगे, यानी चुप रह जाओगे उस समय, एकदम चुप रह जाना है, कुछ नहीं बोलना है, कितना भी कोई अपमान कर दे, और सबसे कठिन काम है, सरल है या कठिन है, सरल है जो समझते हैं सरल है वो हाथ उठाओ, ये देखो कितने कम लोग हाथ उठा रहे हैं, सारे लोग नहीं उठा सकते, हाँ सच बोलना चाहिए ना, लेकिन ये बताना चाहिए ना कि हाँ अब आज के बाद हम समझेंगे सरल है, क्योंकि हमें सरल बनाना है तभी आप दुनिया को शांति दे सकते हो। दुनिया तो अशांति की आग में जल रही है ऐसा कहेंगे ना, और हम बाबा के बच्चों का फर्ज क्या है, हम विश्व कल्याणकारी हैं। तो फिर अगर मैंने अपनी स्थिति को वैसा नहीं बनाया, और ये अभ्यास समय लंबे समय का चाहिए, हम ऐसे नहीं सोच सकते कि हाँ जब अंत समय आएगा तब हम बन ही जाएंगे ना, अब इतना जल्दी थोड़ी बन सकते हैं, टाइम तो लगता है ना हर चीज में, तो इसीलिए बाबा हमें टाइम दे रहा है। और बाबा ने बहुत बार ये बात कही है कि बहुत काल का अभ्यास अंत में कार्य करेगा। आज भी देखो हमें पता है ड्रामा का ज्ञान, कोई भी परिस्थिति ऊपर नीचे होती है, बाबा ने कहा ज्यादा मत सोचो, प्रश्नों में मत जाओ, ये ड्रामा में होना था, हुआ, बनी बनाई बन रही और कुछ बनने नहीं, नथिंग न्यू, कल्प पहले भी हुआ था आज भी हुआ है, कितनी बार मैंने इसको पार किया है, कोई पहली बार थोड़ी पार किया है, अब इतनी बार पार किया है तो आज पार करना क्या मुश्किल है, जो काम मैं कई बार कर लेती हूँ उसमें तो हम परफेक्ट हो जाते ना, जो काम पहली बार करते हैं उसमें शायद हमें मुश्किल होती है, लेकिन ये तो मैंने बहुत बार किया है, तो अगर मुझे वो स्मृति है तो वो परिस्थिति मुझे अशांत नहीं करेगी, ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना है। कईयों के बहुत फास्ट संकल्प चलते हैं, कोई भी बात ऊपर नीचे हो गई, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा। और अगर वो ज्ञानी आत्मा है तब और ज्यादा, अज्ञानी को तो हम फटाफट माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं, उनकी तो हमको सेवा करनी है, तो जो किया ठीक है, इनको ज्ञान नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को लोग ना समझ समझते हैं ना, तो वो कुछ भी गलती करते हैं तो आसानी से माफ कर देते हैं, ना समझ है इनको, इतनी समझ नहीं है, कोई बात नहीं, कितना जल्दी हम कोई बात नहीं कहते हैं, है ना। लेकिन यही अगर हम ज्ञानी आत्माओं के लिए करें तो कर सकते नहीं कर सकते, उनसे हमारी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और अगर वो हमसे बहुत पुराने ज्ञान में है तब तो और ज्यादा, और अगर वो निमित आत्मा है तब तो बात ही मत पूछो, तब तो बिल्कुल नहीं माफ कर सकते कि निमित आत्मा ऐसे कर सकती है, ये तो बाबा की सीट पर बैठे हैं, इनको तो बाप समान होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। और वो बाप समान है नहीं, क्योंकि वो भी हमारे जैसे पुरुषार्थी हैं। बाबा ने तो सिर्फ रोल अलग अलग दिए हैं, किसी की प्रारब्ध को अलग अलग नहीं बताया है। ऐसे नहीं बताया कि आप ग्रस्त में रहते हो तो आपका भाग्य कम है, और जो यहाँ बाबा के घर में समर्पित है उनका भाग्य बहुत ज्यादा है, बोला है क्या बाबा ने ऐसा? अभी मुरली चली थी ना भाग्य के ऊपर, जो त्याग की मुरलियां चल रही है ना, उसमें जो पहली मुरली चली थी उसमें बाबा ने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया कि चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं चाहे सेंटर पर समर्पित हैं, सभी को भाग्य बनाने का एक जैसा अधिकार है। भगवान ने किसी को अंतर देने में नहीं रखा है, लेकिन हम उसको कितना यूज करते हैं, हम उसको कितना बढ़ाते हैं, उस आधार पर हम नंबरवार बन जाते हैं। तो फिर जो भी है, जो भी आत्माएं हैं, हम सब पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनमें कमियां नहीं होंगी, हो सकती हैं। अगर वो लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं तो जरूर बहुत कम होंगी। अब हम अपनी दादियों को देखते हैं, वो बिल्कुल बाप समान है, उनकी एक दृष्टि हमें अनुभव करा देती है। दादियों की दृष्टि मिलते ही कितना शांति, कितना सुख मिलता है। जैसे कि मंदिरों में लोग दर्शन करने जाते हैं तो वो मूर्ति के दर्शन करना भी आजकल दुर्लभ है। कैसी लाइन होती है मंदिरों में, कई बार हम बाहर जाते हैं और जब बहनें हमको ले जाती हैं कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ ना इनके दर्शन करना करने चलो, ऐसे करके, तो हमने देखा वो मंदिरों में इतनी भीड़ होती है कि आप जब टाइम, जब आपका नंबर आता है आप एक सेकंड भी वहां सामने नहीं खड़े हो सकते, तो कितना शांति ले पाएंगे उससे। लेकिन फिर भी बाबा ने तो हमको सागर के समान भरपूर खुद का भी दिया है, और जो भी हमारे यहाँ निमित आत्माएं हैं वो भी कितना प्यार से अपने परिवार की तरह हमसे मिलते हैं, और वो अनुभव हम उनसे करते हैं। तो किसी भी आत्मा के पार्ट को देख करके डिस्टर्ब नहीं होना है, साक्षी होकर के उसको हम एक खेल का हिस्सा समझें, और मुझे उस समय क्या कर्तव्य करना है वो करना है, उनसे अपेक्षा हमें नहीं रखनी है। पर अगर मैंने अपना कर्तव्य कर लिया तो गारंटी है हम उनको बदल पाएंगे। अभी कल हम सोशल विंग में गए थे, यहाँ प्रोग्राम चल रहा है सोशल विंग का, तो वहां सेशन में एक भाई अपने अनुभव सुना रहे थे, तो उसने कहा कि मैं यहाँ आज जो कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, जो भाई मुझे लेकर के आए हैं, वो बीके भाई, नेचुरली बीके भाई ही सेवा करके लेकर आते हैं, तो बीके भाई हैं, और उनको कुछ टाइम पहले किडनैप कर लिया किसी ने और 1 करोड़ फिरौती मांगी जिन्होंने किडनैप किया। तो बोला टीवी पर जब वो छूट गए तो टीवी वालों ने उनका इंटरव्यू लिया कि भाई आपने कैसा फील किया। अब ऐसी परिस्थिति हालांकि रेयर होती है, मतलब ये कॉमन नहीं है, पर फिर भी किसी के साथ भी हो सकती है। अब हो गई जैसे उनके साथ किडनैप करके 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया सब तो नहीं दे सकते। तो वो बीके भाई था तो उसने बाबा को याद किया, बाबा आप जानो, मैं तो आपका बच्चा हूँ, जो करना है करे, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको ही करना है जो भी करना है, बाबा के ऊपर छोड़ दिया। जैसे हम कहते हैं कोई भी बात आए किसके ऊपर छोड़ दो, अपने ऊपर मत लो, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, बाबा ने कहा सब कुछ किसका है, तेरा तेरा करोगे तो तैर जाएंगे, पार हो जाएंगे, और मेरा मेरा करोगे तो माया का दरवाजा खुल जाएगा, है ना। तो उसने ऐसा किया तो वो बोला, पहले वो 1 करोड़ से 50 लाख पे आ गए थोड़ी देर बाद। अच्छा ठीक है, 1 करोड़ नहीं, क्योंकि वो चुप था, कुछ बोलता ही नहीं था, ना गुस्सा करता था ना बोलता था, बिल्कुल शांति में बाबा की याद में। तो बोला ठीक है 50 लाख दे दो। फिर देखा ये कुछ नहीं बोलता है, फिर चुप है एकदम। फिर बोला अच्छा 25 लाख दे दो। फिर 25 लाख चुप, कुछ नहीं। तो बोला इसको कुछ असर ही नहीं होता है, क्या बात है। और फिर होता है ना वाइब्रेशन भी तो होते हैं, जब हम बाबा की याद में हैं, योग में हैं, फिर उनको लगा होगा कि गलत व्यक्ति को पकड़ लिया, इसको पकड़ने से कोई फायदा नहीं। तो उसको दोपहर तक, सुबह शायद लिया किया होगा किडनैप, और दोपहर तक उसको छोड़ दिया, बिना कुछ लिए छोड़ दिया उसको। अब उनके छोड़ने के तो तरीके होते हैं ताकि उसको पता ना चले कि क्या ठिकाना है। तो जैसे ही वो छूट कर आया तो वही टीवी वाले इंटरव्यू लेने लगे, तो उसने यही अपना अनुभव बताया कि मैं शिव बाबा को याद करता हूं और मैंने शिव बाबा को बोल दिया कि बाबा आपको ही संभालना है, मैं आपका बच्चा हूं, आप जानो कैसे बचाना है बस। और बाबा ने अपने आप मुझे बचाया, बाबा ने ही उनको टच किया होगा और उन्होंने बिना कुछ मुझे नुकसान पहुंचाए। हाँ नहीं तो, या तो अगर फिरौती नहीं मिले तो जान से भी मार देते हैं लोग, जान का भी खतरा होता है। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव हैं जीवन के। और बोला कि इस भाई का वो टीवी पर जो इंटरव्यू मैंने सुना उसने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने तुरंत हाँ कर दी कि हाँ मैं आपके साथ वहां चलता हूं। okay? तो हमारी शांति के वाइब्रेशंस दूसरी आत्माओं को भी प्रेरणा देते हैं। तो अगर मैंने वो कर्तव्य कर लिया जो मेरा है तो दूसरे चेंज हो जाएंगे। अब बताओ ऐसे लोग जो डकैत हैं, जिसको हम कहेंगे ऐसे लोग चेंज हो गए, जैसे महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हैं, उंगली माल की सुनी होगी आपने, हाँ वो उंगली माल जैसा डाकू उनके चरणों में गिर गया और कहा मुझे भिक्षु बनना है। ऐसा डाकू जिसको राजा नहीं पकड़ पा रहा और इतना खूंखार कि वो मार के और उंगली काट के वो माला बना करके गले में पहनता था, तो कौन सी शक्ति ने काम किया? उसने कोई उसको उपदेश नहीं दिए वहां, महात्मा बुद्ध ने उसको कोई उपदेश नहीं दिए और वो उपदेश देने से कोई सुधरने वाला भी नहीं था। बाबा कई बार हमें कहते हैं कि अगर हम किसी को शिक्षा देंगे, हम सोचते हैं ये गलत कर रहे हैं तो हम उनको शिक्षा दे दें, तो शिक्षा से वो सुधरने वाले नहीं है। आप शिक्षा देने जाएंगे तो वो और आपको डबल शिक्षा दे देंगे। जैसे बच्चों की बात की, वो बच्चों को सिखाने जाएंगे तो बच्चे आपको सिखा देंगे, क्योंकि आज के बच्चे आपसे ज्यादा होशियार हैं, उनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, आप उनसे जीत नहीं सकते। जीत सकते हैं, जो भी माँ बाप यहाँ बैठे हैं वो बोलिए जीत सकते हैं, तो बच्चों को कैसे शांत करेंगे? हाँ अब उनको अपनी बात भी मनवानी है तो फिर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? हमारे स्वरूप से, है ना, जो हमारा स्वरूप है वो उनको शिक्षा देता है। और अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो उनको क्षमा कर दो। बाबा कहता है क्षमा ही शिक्षा हो जाएगी और क्षमा में शांति है। आपने किसी को क्षमा कर दिया उसका सबसे पहला फायदा मुझे ही होता है, दूसरे को होना हो किसको होने वाला है, मुझे ही होने वाला है। मेरा मन शांत हो जाता है, मेरा मन शुद्ध हो जाता है, मेरा मन बाबा में लगाने में मुझे मुश्किल नहीं होती। फिर नहीं तो उसके अवगुण, उसकी कमियां मेरी बुद्धि को खींचती रहेंगी, जो अभी संडे की मुरली थी कि आत्माएं दो तरह से हमें खींचती हैं, या तो लगाव के रूप से खींचती हैं या फिर घृणा के रूप से खींचती हैं। योग में दोनों ही डिस्टर्ब करती हैं। या तो किसी के साथ बहुत लगाव हो तो वो बुद्धि से नहीं जाएगा, या किसी के साथ बहुत नफरत है, मेरे उसके दिल पसंद न करने वाले कर्म, ये बाबा के शब्द थे, वो मेरी बुद्धि को विचलित करते हैं। तो फिर क्या करना है, क्या करना है, माफ कर देना, ऐसे ही कहेंगे ना। तो माफ करने के लिए कोई हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, दिल से बस एक बार मैंने सोचा कि इनकी जो भी भूल है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो हमारे कार्य के साथी हैं, वो भूलें करते हैं तो हम भी करते हैं ना, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो हम ये याद रखें कि आज इसने भूल की, कल हमसे भी भूल हो सकती है, कोई बात नहीं, तो शांति हो जाती है। जैसे ही मेरे मन में ये ख्याल आया, तो हम किसी की बात को पकड़ के नहीं रखते, कईयों की आदत होती है पकड़ के रखते हैं, छोड़ते ही नहीं है। और अगर आपने पकड़ के रखा तो क्या होने वाला है, किसको परेशानी होने वाली है, मेरे ही होने वाली है। जिसको हम कहते हैं बीती बातों को छोड़ दो, लेट गो, जो हो गया सो हो गया। अब वो 5000 साल के बाद आएगा, बाबा कहता है हाँ, ड्रामा को भी, ड्रामा में जो बात आती है उसको भी अक्ल है, वो एक बार चली गई तो अब 5000 साल के बाद आएगी। तो फिर मुझे भी उसको पकड़ करके नहीं रखना है। तो कभी भी ऐसी बातें मेरे मन में अशांति पैदा करती हैं, तो हम तुरंत बाबा ने क्या कहा है, आप बार बार उसको यूज करेंगे ना तो वो काम करेगी। अगर हम कभी कभी यूज करते हैं तो हम पॉइंट जानते हैं, हमें पता है कि हाँ अगर हमने बाबा की श्रीमत को यूज किया तो जरूर परिस्थिति का समाधान हो जाएगा, लेकिन वो नहीं काम करती है। जैसे आज एक सैनिक युद्ध में जाता है तो वो रोज शस्त्र चलाने का अभ्यास करता है, ऐसे नहीं कि एक दिन अभ्यास करेगा और बाकी समझ लेगा हाँ मेरा निशाना लग जाएगा। तो जब वो रियल दुश्मन सामने आएगा तो शायद निशाना चूक जाए, लेकिन हर दिन अभ्यास करते हैं इसीलिए समय पर निशाना सही लगता है। आज खिलाड़ी भी खेलने जाएगा ना तो रोज खेलेगा तब जाकर वो मेडल जीतेगा, अगर वो एक दिन भी खेलना छोड़ देगा तो वो खेल में जो परफेक्शन होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ज्ञान को हमने सुन तो लिया लेकिन समाया नहीं, मुरली सुनते हैं, नियम है हमारा, ब्राह्मण है, मुरली तो सुनना ही है, चाहे जैसे भी सेंटर पे जाके, चाहे पीएम टीवी से, चाहे जो भी व्हाट्सएप से, चाहे इंटरनेट से, किसी से भी मैंने मुरली तो सुननी है, वो तो सुन ली मैंने। अब मुरली सुन ली, मेरा नियम पूरा हो गया, बस अब सारा दिन हम वैसे के वैसे, ऐसा तो नहीं करते। मुरली सुनते हैं, अगर विधि पूर्वक हमने मुरली सुनी, मानव सेंटर पे सुनी, सेंटर का वातावरण पावरफुल होता है, संघ पावरफुल मिलता है क्योंकि सभी ब्राह्मण आते हैं, तो चार्जिंग होती है, तो 2-3 घंटा बढ़िया असर होता है उसका। उस समय कोई भी बात आपके सामने आएगी बहुत शांति से आप जवाब देंगे, गुस्सा आएगा ही नहीं, करना भी चाहेंगे तो भी नहीं आएगा, पावर है ना सोल में, तो सामना करने की शक्ति बड़ी अच्छी होती है, दूसरों के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, देखो कितने अच्छे हैं ये। लेकिन 3 घंटे के बाद जब बैटरी डिस्चार्ज होने लग गई, हम काम वाम में आ गए, लोगों के संपर्क में, अब जो आत्माएं हमारे संपर्क में आती ना वो हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि वो तो तमोगुणी वाइब्रेशन वाली हैं, तो समझ गए ना, ड्रेन करती हैं हमको, एनर्जी ड्रेन होती है, एक एनर्जी फुल होती है, एक तो चार्ज होती है एक ड्रेन होती है, फर्क है ना उसमें। तो अगर मैंने ज्ञान को रिवाइज नहीं किया तो क्या होगा, क्या होगा, ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। अब 4 घंटे के बाद फिर हम वैसे के वैसे, हम सोचेंगे मुरली तो सुनी थी लेकिन अब काम नहीं कर रही है, कुछ याद भी नहीं आ रहा है बाबा ने क्या कहा, कितनी देर याद रहता है, आपसे पूछते हैं कितनी देर याद रहता है, शाम को पूछेंगे तो बिल्कुल खत्म। इसीलिए बाबा कहता है विचार सागर मंथन करो। तो अगर मैंने घंटे घंटे में अटेंशन देकर के आदत डाल ली अपनी, आदत डालनी पड़ती है, वो संस्कार बनाना अपने आप नहीं बनेगा जब तक आप मेहनत करके नहीं बनाओगे, जैसे बुरी आदतें भी कई बार करने के बाद बनती है ना, ऐसे अच्छी आदतें भी कई बार हम उसको करेंगे तब बनेगी, पर एक बार डाल ली तो छूटेगी नहीं। तो ऐसे हमें डाल लेना चाहिए कि हर घंटे में मुझे बाबा की कोई बात जरूर याद करनी है, या कोई सोमान मुझे जरूर अपने लिए आज का दिन चिंतन में रखना है। अगर मैंने ये समझ आज का दिन पूरा दिन ये अभ्यास अपने लिए रख लिया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मानो है तो सिंपल सी बात, लेकिन शांत स्वरूप आत्मा हूं माना कुछ भी हो जाए, आज मुझे शांति रहना है। आप पेपर बहुत आएंगे क्योंकि माया को भी पता है कि आपने क्या संकल्प लिया है। बाबा कहता है ना, जैसे ही माया को पता चलता है तो वो भी ओपोजिशन पार्टी वाले भी कोई कमजोर नहीं होते, वो भी पावरफुल होते हैं। तो नहीं आती होंगी बातें तो भी उस दिन जरूर आएंगी, ज्यादा आती ना, तो इसीलिए बोला ना वो अपोजिशन पार्टी भी तैयार रहती है कि भाई ठीक है अभी इनका टेस्ट लेके देखो ये सचमुच है या नहीं है। तो मानो हाँ कोई आपको झूठ बोलेगा आकर के, कोई आपको धोखा दे जाएगा, हाँ या कोई आपको जैसे ही ऐसा बुरा बोल जाएगा, या कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कई बार ऐसे होता है हम जिनसे रिस्पेक्ट की आशा करते हैं वो हमारे को इग्नोर कर देते हैं, इसकी भी बहुत फीलिंग आ जाती है कई लोगों को कि अरे देह अभिमान थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, अंश वंश जैसे मैंने कहा। कोई ना कोई ऐसी बात जो आपको अशांत करने वाली होगी जरूर हो जाएगी। तो फिर भी क्या मैं शांत रह सकती हूं? उस समय अगर मैंने ज्ञान यूज नहीं किया तो मैं नहीं रह सकती, अगर ज्ञान यूज कर लिया तो शांत रह पाऊंगी। बाबा के ज्ञान में वो शक्ति है कि वो किसी भी परिस्थिति में हमें शांत कर सकता है। तो समझ गए ना कि कैसे हमें ज्ञान को यूज करना है। फिर अगर हम शांति की शक्ति में परफेक्ट होते जाते हैं, पावरफुल होते जाते हैं, तो हम मनसा सेवा कर सकते हैं, जिसको बाबा कहता है एक स्थान पर बैठे हुए विश्व के किसी भी कोने में कोई आत्मा है उस तक मैं अपना संदेश पहुंचा सकती हूं। जैसे आज साइंस के साधन हैं, टीवी चलता है, दुनिया के किसी कोने की न्यूज ऐसे हम सुनते हैं जैसे हमारे सामने ही है, सामने ही सम्मुख आ रहा है ना वो चित्र, ऐसे होता है। तो बाबा ने कहा कि तब वो आत्मा ऐसे महसूस करेगी जैसे कोई सम्मुख मेरे से बोल रहा है। अभी तक इस स्टेज तक हम ब्राह्मण नहीं पहुंचे हैं, ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार बहुत लोगों को होता है। अभी भी बहुत विदेशों में ऐसे भाई बहने हैं जो ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार के बाद ज्ञान में आए। जब ओम मंडी शुरू हुई थी तभी भी ऐसा हुआ, आप सभी जानते हैं शुरू में घर बैठे लोगों को साक्षात्कार हुए। तो बाबा कहता है जो आदि वो अंत होना है, आदि सो अंत, लेकिन वो स्थिति पहले हमारी बने। अगर मेरी मनसा इतनी पावरफुल है, हम लाइट हाउस जैसे हैं, हमारा बल्ब कैसा होता है ना, जैसे 0 वाट का बल्ब है या 60 वाट का बल्ब है या 100 वाट का बल्ब है या 1000 वाट का बल्ब है, तो जैसा बल्ब जलेगा वैसी लाइट होगी ना। अगर 0 वाट का बल्ब जलेगा तो, और अगर 1000 वाट का बल्ब जला तो, और अगर लाइट हाउस है तो, है ना फर्क है ना। तो मेरी मनसा कितनी पावरफुल हुई है, चलो अब 0 वाट तो हम नहीं है, इतनी बैटरी तो डिस्चार्ज नहीं है अभी, हाँ कम से कम 100 वाट तक तो हम आ चुके हैं, क्या कहेंगे, आ चुके नहीं आ चुके, है ना। लेकिन कितना बनाना है, लाइट हाउस जितना बनाना है। तो जब इतनी मनसा पावरफुल होगी तो हम आत्माओं से अन्य आत्माओं को दूर बैठे भी अनुभव होगा, उनको हम मदद कर सकेंगे। और ऐसे बहुतों के अनुभव हैं भी, हमारे खुद के भी अनुभव हैं कि कैसे हम बाबा जिसे कहते हैं दूर बैठे हम आत्माओं को वाइब्रेशंस दे सकते हैं और वो आत्माएं फील करती हैं उस चीज को। ब्रह्मा बाबा की भी जब हम हिस्ट्री सुनते हैं तब एक एक बताते हैं मिसाल कि विश्व रतन दादा जो थे यज्ञ में, वो बीमार हो गए थे और बॉम्बे में हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो इतना पेन था उनको ऑपरेशन के बाद, नींद नहीं आ रही थी, कई दिनों से वो सोए नहीं थे। बाबा ने उनसे फोन पे बातचीत की तो उन्होंने बताया बाबा ऐसे ऐसे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम आज की रात बहुत अच्छा सोओगे, और बाबा ने, ब्रह्मा बाबा रात को बैठकर उनको योगदान देते रहे, और विश्वरतन दादा बहुत गहरी नींद सोए बहुत दिनों के बाद उससे। तो ये बाबा ने अपनी पावर भेजी उस आत्मा को जिसने उसके दर्द की महसूसता को कम कर दिया। तो जो हमारे तन के हिसाब किताब हैं, बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति से हम अपने भी और दूसरों के भी, हम अपने हिसाब किताब या रोग को सूली से कांटा अनुभव कर सकते हैं। सूली जैसा हिसाब होगा लेकिन हमें फील कैसा होगा, देखने वालों को सूली जैसा लग रहा है लेकिन मेरे को जो महसूसता है उसकी, जो दर्द उसका है वो मुझे उतना फील नहीं होगा, कांटे जैसा मुझे लगेगा, और बहुत जल्दी हम उससे पार हो जाएंगे। हमने कई बीके भाई बहनों को देखा है जिन्होंने अपनी मनसा शक्ति से कैंसर जैसी बीमारी को जीता है। एक भाई थे, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ, मैं नाम नहीं बताती हूँ आपको, लेकिन वो अभी भी हैं। 20 साल पहले मल्टीपल ट्यूमर्स थे उनके उसमें ब्रेन में, और डॉक्टर ने कहा 6 महीना इनऑपरेबल है, नहीं हो सकता कुछ भी, और 6 महीना जिंदगी है आपकी, जो जो आप करना चाहते हो करो। तो उसने कहा ठीक है ना, आप 6 महीना है तो फिर क्यों नहीं, बाबा को ही याद करके जितनी कमाई करनी है वो कमाई करो। लेकिन वो ब्रेन ट्यूमर का तो असर आता है ना, पैरालिसिस होना शुरू हो गया, बोलने में थोड़ा डिफेक्ट आने लग गया, चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने कहा चलो अब लास्ट टाइम है, बाबा मिलन के दिन चल रहे थे तो एक बार बाबा से मिल लेते हैं। तो बहनों से कहा, सेंटर की बहनों से, कि एक बार बाबा से मिलवा दो। तो बहनें भी, भले उनको थोड़ा मेहनत लगी उनको लाने में, वो लेकर के आई भाई को बाबा से मिलवाने के लिए। और इन दिनों ओम शांति भवन में बाबा मिलते थे, क्योंकि पुरानी बात है, ओम शांति भवन में बाबा मिलते थे। तो वो क्योंकि स्पेशल केस था तो उनको स्टेज पे ले जाया गया बाबा के सामने, तो बोल नहीं पा रहे थे, बोलने का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो जैसे बाबा से दृष्टि लेने की कोशिश कर रहे हैं, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, दो लोगों ने ऐसे ऐसे पकड़ के खड़ा कर रखा था। तो बाबा के हाथ में ना किसी ने फूल दिया था, जैसे देते हैं ना फूल, तो बाबा ने वही फूल उनके, कुछ भी नहीं कहा बाबा ने, बाबा ने वो फूल लेकर के उनके सिर पर घुमाया। अब वो बताते हैं कि मैं स्टेज से उतरा और उतर के चलने लग गया, खड़ा हो गया, जैसे कोई चमत्कार नहीं हो जाता है इस तरह से, मतलब उन्होंने फील किया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, मैं तब जब मुझे ये सब पता चला, मैं 2:30 बजे से उठ करके योग करता था, अमृत वेला बहुत पावरफुल कर लिया अपना अमृत वेला। तो तब से लेकर के एक दिन भी उन्होंने वो अमृत वेला मिस नहीं किया था, और देखो उसका फल बाबा ने उसको दे दिया ना, वो योग बल से जो उन्होंने अपनी बीमारी को क्या कहेंगे, जो कांटा, जो सूली जैसी बीमारी थी उसको उन्होंने कांटा बनाया। और उसके बाद थोड़ा सा नेचुरोपैथी की हेल्प ली उन्होंने, एलोपैथिक में तो इलाज ही नहीं, नेचुरोपैथी की हेल्प ली, थोड़ा सा उन्होंने वो होम्योपैथी किया, उन्होंने बताया, और विद इन 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स कंप्लीट नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उनके नेचुरोपैथ डॉक्टर ने कहा अब आप कभी सीटी स्कैन कराने मत जाना, और बोला उसके बाद मैंने कभी सीटी स्कैन कराया ही नहीं। अब वो क्या हुआ उन ट्यूमर्स का वो भी नहीं पता, लेकिन ठीक हो गए और आज तक भी ठीक है, तो मिरेकली हुआ ना ऐसे कहेंगे। तो पूरा एक तो निश्चय बुद्धि, यानी संशय जरा भी ना हो, अगर हम में निश्चय है पूरा और हम ऐसा समझें, जैसे कहते हैं ना बीमारी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा वर्णन करते हैं तो बीमारी बढ़ती जाती है, लेकिन अगर हमने सोच लिया मैं स्वस्थ हूं, बिल्कुल आप ऐसा विजुलाइज करते हैं कि बीमारी है ही नहीं, खत्म हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हूं, तो हम ब्राह्मण जो पवित्र आत्माएं हैं उनके संकल्पों में शक्ति है, पर यह है कि मेरी पवित्रता की स्टेज कितनी है और मेरा निश्चय कितना है। अगर 100% निश्चय है और 100% हमारा संकल्प पावरफुल है, तो हमने देखा है कि लोगों की बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारी भी रिवर्स हो जाती है। हाँ जी, हाँ तो आप सुनाना, आप सुनाना सबको। तो ये है शांति की शक्ति, पर अभी हम बाबा के बच्चे उस स्टेज तक हम पहुंचे नहीं है, लेकिन अगर हम विधि पूर्वक जो बाबा हमें श्रीमद् प्रमाण पुरुषार्थ करने को कहते हैं और हर दिन की परिस्थितियों में हम उसे यूज करते हैं, उस ज्ञान को यूज करते हैं और उसका रोज अभ्यास करते हैं, जैसे मैंने कहा एक दिन में नहीं चलेगा, लेकिन हर दिन अगर हम उसे यूज करते जा रहे हैं तो फिर वो मेरे जीवन में आ गया, फिर वो मेरे स्वरूप में आ गया, मेरे संस्कार में आ गया, तो फिर बाप समान हमारी स्थिति बनती जाती है और उस स्थिति से हम जो भी मनसा सेवा हम चाहे स्वयं के लिए चाहे अन्य आत्माओं के लिए करना चाहे वो सिद्धि मिलती है। मेरे को याद है एक बार हमारे एक रिलेटिव थे, स्वाइन फ्लू फैला हुआ था उन दिनों और वो उसको स्वाइन फ्लू हो गया और वेंटिलेटर पर थी वो। मैं स्वाइन फ्लू लंग्स को ही डैमेज करता है, तो वो ज्ञान में नहीं चलते थे, जस्ट जानते थे कि भाई हमारी सिस्टर है वो वहां है ऐसे। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे हैं और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो अब हम आपको कह रहे हैं कि भाई वो कहते हैं भगवान अब कुछ कर सकता है ऐसे। तो लोगों को ऐसे लगता है ये योग करते हैं तो ये भगवान के ज्यादा नजदीक है, अगर ये भगवान को बोलेंगे तो भगवान इनकी बात ज्यादा मानेगा, ऐसा सोचते हैं ना। तो ऐसे समझ के उन्होंने मेरे को वो बात कही कि दीदी आप ऐसे कुछ कहो बाबा को उसके लिए। तो मैंने कहा ठीक है कह देंगे, हम क्यों मना करेंगे, जो हम कर सकते हैं वो, उसको मना करने की कोई बात नहीं। पर मैंने फिर भी एक घंटा विशेष उस आत्मा के लिए योग लगाया, उसको योगदान दिया और बाबा के ऊपर मैंने छोड़ा। मैंने कहा अब उसने इतनी आशा से फोन किया है तो चलो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, तो वो कर दिया मैंने। 3 दिन के बाद उसका फोन आया कि डॉक्टर बोलते हैं बहुत प्रोग्रेस है और ये तो जैसे मिरेकल है, मतलब कभी भी इतनी स्टेज तक जो केस चला गया उसमें ऐसी प्रोग्रेस नहीं होती है। और अगले 3 दिन में तो वो आईसीयू से बाहर आ गई और 15 दिन में तो ठीक होकर हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो गए और वो आज तक भी है। अब वो कैसे हुआ वो बाबा जाने, पर हो जाता है ना। बाबा कहता है अगर हमारी भावना शुद्ध है, शुभ है, निस्वार्थ है, तो हमारी वो मनसा सेवा काम करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं समझती हूँ इसका एक पार्ट है शांति की शक्ति का, तो बहुत विस्तार है लेकिन जितना समय था उस हिसाब से। ओम शांति।
तो ये साइलेंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप सब भी जरूर करते होंगे, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, मेरा भी ऐसा अनुभव है, आप सबके भी होंगे और मैं समझती हूँ हम सभी के हैं ऐसे अनुभव कि कैसे बाबा कभी सर्जन बन करके, कभी गाइड बन करके, कभी गार्ड बन करके, कभी बाबा कंपेनियन बन जाता है तो कभी कैनोपी बन जाता है, और कैसे बाबा की, भगवान की उस रूप में हमें जो हेल्प मिलती है, मतलब यू जस्ट कैनॉट फॉरगेट इट, इसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, वो सदा सदा के लिए रह जाती है। हम दूसरों के अनुभव से भी लर्न करते हैं और खुद भी जब अनुभवी बन जाते हैं तो हमारी लाइफ धीरे धीरे मुश्किलों से खत्म हो जाती है, समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि औरों को भी सॉल्यूशन देने वाले बन जाते हैं, इंस्पिरेशंस देने वाले बन जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने अनुभव युक्त जो हमें बातें सुनाई अपने अनुभव से, इसे और भी ज्यादा हम सभी जरूर अनुभवी बन करके बाबा को और बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में ला सकेंगे. बहुत बहुत थैंक्स.
Oh.